apa sih lagi?
श्री प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन प्यारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन प्यारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा गौरांगिताई 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 जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रज काचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् इष्टिवान् कृष्ण श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। His constant Stapakacharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada ki. Grantara Srimad Bhagavatam ki. Nitai Gautramanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaivam Narottamam. Devim Sarasvati Vyasam. Tadojayamudirai. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktira Bhavati Naishtiki. आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का सातवां अध्याय का श्लोक संख्या नंबर 37 और इनका शीर्षक है तृणाव्रत कावल। तो श्लोक को हम उच्चारण करेंगे। स विक्षया विश्वम सहसा राजन संजात विपत्तु। सम्मिल्य मृगसाव अक्षी नेत्र अस्ति सुविस्मिता सविक्षया विश्वम सहजा सविक्षया विश्वम सहसा राजन संजात विपेतु राजन संजात विपेपतु सम्मिल्य मृगाश्वाक्षी सम्मिल्य मृगासावक्षी सम्मिल्य मृगासावक्षी नेत्र अस्ति सुविस्मिता नेत्रे आसीत् सुविस्मिता सा वीक्ष्य विश्वं सहसा राजन् संजात विपेतुः सम्मिल्य मृगासावाक्षी नेत्र आसीत् सुविस्मिता सा वीक्ष्या विश्वं सहसा राजन् संजात विपेतुः। सम्मिल्य मृगासावाक्षी नेत्र अस्ति आसीत् सुविस्मिता शब्दार्थ इस प्रकार है, सा माता यशोदा वीक्षय देखकर विश्वम संपूर्ण विश्व को सहसा अचानक अपने पुत्र के मुंह के भीतर राजन हे राजा महाराज परीक्षित संजात बेपतु उनका हृदय धड़कने लगा। सम्मिल्य खोलकर मृगसाव आक्षी मृग नैनी नेत्रे उनकी दोनों आंखें आसित हो गई। सो विस्मिता आश्चर्यचकित। अन्यवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनका हृदय धड़कने लगा तथा आश्चर्यचकित होकर वे अपने अधीर नेत्र बंद करना चाहती थी। तात्पर्य माता यशोदा ने शुद्ध मातृ प्रेम के कारण सोचा कि यह अद्भुत बालक जो तरह तरह के खेल कर रहा है अवश्य ही रोग ग्रस्त है। उन्होंने बालक द्वारा परिषित आश्चर्यों की प्रशंसा नहीं की प्रस्तुत वे अपनी आंखें मूंद लेना चाहती थी। उन्हें अन्य खतरे की संभावना लगने लगी इसीलिए उनकी आंखें मृग के बच्चे की आंखों के समान तुलना किया गया है। यह सब योग माया की व्यवस्था थी। माता यशोदा तथा कृष्ण के बीच शुद्ध मातृ प्रेम का संबंध है। इसी प्रेम के कारण माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य प्रधान को ठीक से समझ नहीं पाई। कहीं कहीं इस अध्याय में प्रारंभ में दो अतिरिक्त श्लोक प्रकट होते हैं। एवं बहूनि कर्माणि गोपालं साम सयोषितां नंदस्य गेह ववर्धे कुर्वन् विष्णु जनार्दन। इस तरह असुरों को दंड देने और उनका वध करने के लिए बालक कृष्ण ने नंद महाराज के घर में अनेक लीलाएं प्रदर्शित की और ब्रजवासियों ने इन घटनाओं का आनंद लिया। एवं सद्विवृत्ते विष्णुर नंद केहे जनार्दन कुर्वन आसीन आसीम कुर्वन अनिशम आनंदम गोपालानां स योषितां। गोपो तथा गोपियों के दिव्य आनंद अंदर आनंद आनंद वर्धन के लिए समस्त असुरों के वधकर्ता कृष्ण अपने पिता तथा माता नंद एवं यशोदा द्वारा इस तरह पले गए। श्रीमत श्रीपाद श्रीपाद विजयध्वज ने इस अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद एक अन्य श्लोक जोड़ दिया है। विस्तरेना कारुणात् सर्व पाप प्रणाशनम् वक्तुम अर्हसि धर्मज्ञा दयालुस्त्वम् इति प्रभु। तब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण लीलाओं से संबंधित ऐसी कथाएं कहते रहने के लिए अनुरोध किया जिससे राजा उनसे दिव्य आनंद प्राप्त कर सके। इस तरह इस प्रकार श्रीमद् भगवत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर तृणाव्रत का वध शीर्षक सातवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। होम ज्ञान निरंजस्य ज्ञानं पुनश्चवाञ्च चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपग्रामीयं तथा विश्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इन श्लोकों में यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के मुख में उनके मुखारबिंद में कुछ विश्व रूप के दर्शन का झलक देख रही है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने तृणाव्रत का जब वध किया तो वध करने के पश्चात यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद पर बिठाकर उन्हें स्तनपान कराने लगी। श्रील प्रभुपाद भी जब पुतना वध के यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण ने जब पुतना का वध किया तब उसके पश्चात वहां पर भी यशोदा मैया ने बाल गोपाल कृष्ण को स्तनपान कराया। तो वहां पर भी एकादे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि बालक जब दूध पीना शुरू करता है तो ये पता लगता है कि अब बालक स्वस्थ है यानी खतरे से खाली है। तो वैसे ही यहाँ पर यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण को अब दूध पिलाना शुरू की। तो जैसे ही यशोदा, जैसे ही ये दृश्य, भगवान श्री कृष्ण जब दूध पी रहे थे और इस दृश्य को यशोदा मैया देखकर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी और उनके सौंदर्य को देखकर और पूरी तरह उनमें तलीन हो गई थी। और हुआ यूं कि भगवान श्री कृष्ण उसी वहां पर दूध पीते पीते उन्हें नींद आने का एक झलक दिखाई पड़ा और उन्होंने एक जबाई ली। और कृष्ण ने केवल अपने मुख से जब जबाई लिए तो वहां पर यशोदा मैया ने क्या देखा कि इनके मुखारविंद में सूर्य, चंद्र और पहाड़ और तरह तरह के जो जो ग्रह है वो सारे वस्तुओं को देखकर एकाएक यशोदा मैया चकित हो गए। तो यहां पर ये वर्णन आता है कि सवीक्षया विश्वम सहसा, पूरे उन्होंने विश्वम पूरे विश्व को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में देखा। राजन संजात वेपतु, और ये दृश्य देखकर हुआ यूं, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, कि यशोदा मैया आसित सुविस्मिता, वो सुविस्मिता एकाएक आश्चर्यजनक से वो देखने लगी, सुविस्मिता। और कैसे मृगसा वाक्षी, यानी कि उनकी जो नेत्र है वो बालक, जो बाल हिरण जो होता है वो बच्चे के हिरण के समान उनके नेत्र दिखाई देने लगे। और इस नेत्र का वास्तविक तुलना इस प्रकार किया गया कि घबराहट पूर्वक, तो यशोदा मैया एक घबराते हुए देखने लगी। और श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यशोदा मैया को इसलिए घबराहट हुआ क्योंकि उन्हें एकाएक ये विचार हो गया कि कहीं मेरे बाल गोपाल कृष्ण को कहीं कुछ बीमारी तो नहीं पकड़ लिया, और इस घबराहट से वो देख रही थी। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण सवीक्षया विश्वम, जो भगवान श्री कृष्ण अपने मुख में पूरे विश्व का दर्शन दे रहे हैं। तीसरे स्कंद में भी श्लोक प्रभुपाद एकादे तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि भगवान इतने निपुण है कि सब कुछ वो छोटा कर सकते हैं, पूरे बड़ा बड़ा वस्तु को भी छोटा कर सकते हैं। आज के तारीख में जो भी विज्ञान है वो विज्ञान क्या करते, सारे जितने भी डेटा है उसको कम संक्षेप में एकदम छोटे चिप में भर कर दे देते, या छोटे पेनड्राइव में बड़े से बड़े डेटा भी भर जाता है। लेकिन वास्तविक भगवान जैसा वैज्ञानिक कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने पूरा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने एक छोटे से मुखारविंद में दर्शन दे दिया। यह भगवान की श्रेष्ठता है। तो उसी के तात्पर्य में वर्णन करते कि भगवान कृष्ण का नाम भी इसी प्रकार है, कृष्ण यानी कि हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप को छोटा कर देता है, न यानी कि उड़ा देता है। तो हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप को राई के समान बनाकर उसे फूंक मार के उड़ा देते हैं भगवान कृष्ण। और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया महाप्रभु की लीला में, जगाई मदाई के सारे पाप को उन्होंने केवल राई के समान बनाकर उनको उड़ा दिया। ये इस प्रकार भगवान के नाम में शक्ति है कि सारे जन्म जन्मांतर के पाप को भी छोटा कर सकते हैं। वैसे भगवान ने अपने मुखारविंद में पूरे विश्व ब्रह्मांड को एकदम संक्षेप में छोटा करके दिखा दिया। और इसके पहले यशोदा मैया, आचार्यगण ये टीका लिखते हैं कि इसके पहले यशोदा मैया ने सुना था कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े पर्वत होते हैं, समुन्दर होता है, ऐसे सुना था, लेकिन कभी इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में देखी नहीं थी जो इस बार दिख रहा है। तो यहां पर अब यशोदा मैया को वास्तविक रूप एक प्रैक्टिकली उन्हें दिखाई पड़ रहा है, ये भौतिक संसार के व्यवस्था या भौतिक संसार के ढांचा को देखकर वो यशोदा मैया आश्चर्यजनक हो गई। तो भक्तों के लिए कोई समस्या की बात नहीं है, भगवान उनको वहीं पर ही बैठे बैठे देख सकते हैं, उन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सभी कुछ अपने भक्त के लिए सारी उपलब्धि लाकर दे देते हैं। तो यहां पर पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन यहां पर यशोदा मैया कर पा रही थी। अब वास्तविकता देखा जाए कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड जो है भगवान के अंदर ही है, और वही भगवान सारे अणु में भी उपस्थित है। अंडांतरस्तु परमाणु छियांतरस्तु, तो वैसे भगवान मत्स्थान सर्वभूतानि, जो कि हर वस्तु के अंदर भी उपस्थित है और सारे वस्तु उनके अंदर भी है। अब ये जब सुनते हैं तो आश्चर्यजनक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो भगवान एक वस्तु के अंदर दूसरा वस्तु हो सकता है, लेकिन उस वस्तु के अंदर वो वस्तु कैसे हो गया। लेकिन यहां पर भगवान सभी अणु में भी उपस्थित है और सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर भी अटका हुआ है। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां की जय। तो ये आश्चर्यजनक वाली बात जो अब हम अपनी बुद्धि की कल्पनाओं से नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न यहां तीसरे स्कंद में देवकी माता पूछती है। देवकी माता पूछती है भगवान देवहूति कपिल, देवहूति माता अपने कपिल पुत्र को पूछती है, कपिल मुनि को पूछती है कि हे कपिल, ऐसे कैसे कि आप मेरे गर्भ में जन्म लिए जबकि आपके गर्भ में पूरा ब्रह्मांड अटका हुआ। वो कहती है कि सत्वम भद्रो में जटरे न नाथा कथम नु यशोधरा यत आसित शेत समया शिशुर अंगरी पान। वो पूछ रही है कि सत्वम भद्रो में जटरे न नाथा, आपके ही गर्भ में आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और जिस नाभि कमल के अंतर्गत उनके ही कमल के जो जो डालिया है कमल की नीचे की, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड अटका हुआ, और वही कहां से निकले, भगवान के गर्भ से। और वही प्रश्न ये पूछ रही है कि आपके गर्भ में जब पूरा ब्रह्मांड अटका हुआ है तो आप मेरे गर्भ में कैसे अटक गए, ये कैसे मैं समझूं। और ये देवकी माता पूछते, ये देवहूति माता पूछती है कपिल मुनि को। तो ऐसे भगवान जो अचिंत कार्य कर सकते हैं, जैसे अब भगवत गीता के श्लोक के अनुसार शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिय, इंद्रिय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, फिर परमात्मा। तो वैसे एक सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है। अब मन की अवस्था जरा देखिए, मन कैसे है, अब इन्हें इस प्रकार हम समझेंगे इस उदाहरण से। जैसे कि मन अगर किसी एक रूम में कोई व्यक्ति बैठा है और उस रूम में अगर उसने समुन्दर के विषय में अगर उन्होंने स्मरण किया है, तो वो बैठा है एक खोली में और उस खोली के अंदर उसका मन है और उसी मन में उन्होंने पूरा समुन्दर का स्मरण किया है। अब समुन्दर आया कहां पर, खोली के अंदर। तो जब मन एक छोटे से खोली के अंदर बैठ कर ऐसे अद्भुत वस्तुओं को अगर उस स्मरण कर कर वो उसके अंदर ला सकता है, तो मन से श्रेष्ठ कौन हुआ। स्वाभाविक है, भगवान तो अद्भुत है, तो क्यों नहीं कार्य कर सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात ही नहीं है। तो वैसे भगवान अपने मुख में पूरा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ही बिल्वा मंगल ठाकुर प्रार्थना करते हुए वो लिखते हैं कि यद रोम रंग परिपूर्त विधाव रक्षा बरहा जन्मनि बहुबरा विश्वमूर्धे तम नाम नाथ अरविंद दृशम यशोदा पानी द्वयंतम स्वप्न स्नपयम बहुवह। वो कहते हैं कि बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि आपने जब वराह अवतार लिए तो आपके एक रोम के छिद्र में पूरा समुन्दर के पानी को भी डाल दे तो भी कम पड़ेगा।
और ये भगवान वही वरा भगवान को कहते कि आप ही जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आए थे, वही कृष्ण जब आए ब्रज में वृंदावन गोकुल धाम में, तो उन्हें नीलाने के लिए जब यशोदा मैया एक बकेट पानी लेती थी, सीधे सर पे डालकर उसका नीलाना हो जाता था, चलो नाना हो गया। केवल एक बकेट पानी में यहाँ पर कृष्ण का नाना हो जाता था, वही कृष्ण जब वराह के रूप जब धारण किया तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का भी समुन्द्र का पानी भी एक रोम में उसके अंदर कम पड़ता था। और ऐसे है भगवान अद्भुत, जिस अद्भुत कार्यों को देखकर भक्त लोग भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान अपने अद्भुत कार्यों को व्यक्त करते हुए दिखा रहे और वो अपने मुखारविंद में पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखा रहे, तो विश्व रूप का यहाँ पर दर्शन हो रहा है। अब वही कृष्ण जो विश्व रूप के दर्शन दिखाने का मुख्य कारण क्या था, ऐसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं कि तीन प्रकार के उपासक लोग हैं। भक्त तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन उनमें से तीन प्रकार के उपासकों का वर्णन करते हैं। तो प्रथम बताते हैं कि जो कोई अपने आप को भगवान समझता है, कुछ लोग, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो लोग किसी भी अन्य वस्तुओं को निर्माण करकर, किसी भी अन्य रूप का निर्माण करकर उनको पूजनीय मानकर उसे ईश्वर समझते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो सारे भौतिक जगत को देखकर इसे विश्व रूप को ही आराधनीय रूप में पूजा करते हैं। ऐसे तीन प्रकार के लोग हैं, लेकिन इसमें से सबसे निकृष्ट माना गया जो अपने आप को स्वयं भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। अब वैसे ही जो विश्व रूप को जो पूजनीय रूप में जो स्वीकारते हैं, वो वास्तविक में कनिष्ठ भक्त के रूप में तुलना किया गया, वो कनिष्ठ अधिकारी में आता है, क्योंकि वो सर्वोच्च जो रस है उसको प्राप्त नहीं करता। अब है कौन, उसी कृष्ण को ये ऐसे मानते हैं। जैसे भागवतम के दसम स्कंद में ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करते हुए कहते, इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूतिया दास्यं गतानां पर दैवतेना मायाश्रितानां नरतार दारगेना साखं विजृश्यो कृत पुण्य पुंज। तो वहां पर वर्णन करते इत्तम सतानां ब्रह्म सुखानुभूतिया, तो ये वर्णन करते हैं कि भगवान ही, भगवान को ही अन्य देवी अन्य लोग वो कैसे देखते हैं। इतम सतानं ब्रह्म सुखानुभूया, जो ब्रह्मवादी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि यही वास्तविक ब्रह्म के मूल आधार है और वो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वही भगवान को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। और उसी भगवान को, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्तगण अपने आप को सेवक के दास्यम गतानम पर दैवतेना, अपने आप को दास्य के रूप में स्वीकारते हुए पूछते हैं। मायाश्रितानाम नर दारगेना, मायाश्रितानाम, तो कुछ लोग भगवान को, जो नास्तिक लोग जो होते हैं वो लोग भगवान के स्वरूप को मायाश्रितानाम ये कहते कि ये माया से बना हुआ है। तो इस प्रकार मूढ़ लोग भगवान के इस स्वरूप को, इस साख्यम ब्रिजस्य कृत पुण्य पुंजा, मगर जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं में भाग लिए हैं, भगवान के साथ जो लीला कर रहे, यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि यहाँ पर ये जो ग्वाल बाल जितने भी इकट्ठे हुए हैं, ये सारे ग्वाल बाल कृष्ण के साथ लीला कर रहे, ये सभी लोग अपने पूर्व जन्म में कई उन्होंने पुण्य किया है करके इनके संगति में आए हैं। अब इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी ये स्तुति गाते हुए ये समझा रहे कि कैसे उसी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वैसे ही भगवान के अंदर ही विश्व रूप है, भगवान ही विश्व रूप दिखाते हैं। तो विश्व रूप कुछ और नहीं है, भगवान से पृथक नहीं है, तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो भगवान से ही निकला हुआ है। जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि यह जगत आया कहां से है। यह जगत आया है पूर्ण सत्य से। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि पूर्ण सत्य से अगर कुछ वस्तु निकला है तो वो भी सत्य ही होगा, कैसे असत होगा। जैसे सोने के टुकड़े से अगर कुछ और सोना निकालेंगे या कुछ और टुकड़ा निकालेंगे तो वो भी क्या रहेगा, सोना ही रहेगा। तो ये भौतिक जगत कहां से निकला है, पूर्ण सत्य से, तो ये भी सत्य ही है। हाँ, ये सत्य है लेकिन क्षणिक समय के लिए। तो वैसे ही विश्व रूप जो भगवान का है वो क्षणिक स्वरूप है, वो शाश्वत स्वरूप नहीं है। और वो क्षणिक स्वरूप जो भक्तगण इसे देखना नहीं चाहते, भक्त लोग इसे पूजनीय रूप में नहीं स्वीकारते, वो सीधे भगवान को ही श्याम सुंदर के रूप में पूजनीय रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ होते हैं वो नहीं। इसलिए यशोदा मैया ने जब भगवान के मुख में जब इस विश्व रूप का जब झलक देखा, दर्शन करते ही वो सोचने लगी, मैं अब अपने आंख को मूंद दूं, अपने आंखों को बंद कर दूं, मुझे और नहीं देखना है। ये यशोदा मैया का विचार हो गया। तो वैसे ही भक्त जो होते हैं वो कभी विश्व रूप देखकर बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जैसे अर्जुन ने भी विश्व रूप का दर्शन किया भगवत गीता में, तो जहां पर भगवत गीता के 11वें अध्याय तक भगवान ने केवल उनको समझाया कि कैसे मैं किस प्रकार तुम मेरा दर्शन कर सकते हो, और स्थान पर केशु केशु च भावेशु, किस तरह तुम मेरा हर स्थान पर दर्शन कर सकते हो, पूरा सब कहने के बाद उन्होंने अब प्रैक्टिकली दिखाया। इसलिए भगवत गीता है क्या, ऑडियो और वीडियो दोनों फिल्म है। ऑडियो कहां तक हुआ, 10वें अध्याय तक, 11वें अध्याय में वीडियो शो शुरू हुआ। और यहां पर अर्जुन ने भी जब इस वीडियो शो को जब देखा, जब भगवान के इस विश्व रूप को जब देखे, तो अर्जुन के मन में भी घबराहट हुआ और यशोदा मैया को भी घबराहट हुआ। अब दोनों के घबराहट में अंतर है। वो अंतर क्या है कि यशोदा मैया घबरा गई क्योंकि वो यह सोच रही थी है, मेरा छोटा बालक है और पता नहीं कुछ बीमारी लग गया है लगता है, इसके मुख में ये सब क्या दिख रहा है, ये यशोदा मैया का विचार था। लेकिन भगवान के विश्व रूप को देखकर जब अर्जुन घबरा गए, तो अर्जुन घबरा गए इसीलिए क्योंकि अर्जुन यह सोच रहे थे कि मेरा मित्र इतना महान है और मित्रता के लेन देन में तो मैंने कई प्रकार से उन्हें अवहेलना किया या उनका निंदा किया या कभी कभी उनको निरादर करते हुए उनके नाम को उच्चारण किया, और ये सब अर्जुन के मन में विचार आया कि मैं तो बहुत अपराध कर दिया हूं। तो अर्जुन इस बात से घबरा गए थे कि मैं अपराधी हूं, और इसलिए वो क्षमा मांग रहे थे कि जिस प्रकार पिता अपने बच्चे को क्षमा कर देते हैं, जिस प्रकार एक प्रेमी अपने प्रियसी को माफ कर देता है, वैसे ही मेरी भूल को भी आप माफ कर दो। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वो अपने अपराध से वंचित हो रहे थे। तो वैसे दोनों के घबराहट, और जब दुर्योधन ने जो दर्शन किया वहां पर भी घबराहट हुआ दुर्योधन को, लेकिन वो घबराहट भी अलग था। तो वो घबरा गए अपने मृत्यु के डर से। तो इस प्रकार जब भगवान भक्त के विश्व रूप को जब भक्त देखते, भगवान जब अपने विश्व रूप को दिखाते अपने भक्त को, तो भक्त लोग इतना उनसे पूजनीय रूप में नहीं स्वीकारते। इसलिए हम देखते हैं आगे वहां पर अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, आपने जो विश्व रूप दिखाया कृपा करके ये छोड़कर कुछ चतुर्भुज वाले रूप दिखाइए कुछ। तब उन्होंने उस रूप को बन करके चतुर्भुज का रूप दर्शन दिए। तो ऐसे अर्जुन यहां पर ये बता रहे कि किस प्रकार जो भगवान का जो स्वरूप, जो वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप का जो दर्शन सर्वश्रेष्ठ है, ना कि विश्वरूप का। वो क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के भगवत गीता के 11वें अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में जहां पर ये बताते हैं कि अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया। तो दिव्य दृष्टि क्यों प्रदान किया? क्या अर्जुन कृष्ण को दर्शन नहीं कर पा रहे थे? क्या अर्जुन कृष्ण को कुछ भौतिक दृष्टि से देख रहे थे? क्या उनके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी? अर्जुन जब कृष्ण को जब देख रहा था, कृष्ण से जब वार्ता कर रहा था, तभी भी अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी, ऐसे नहीं कि नहीं थी। तो विश्व रूप देखने के लिए क्यों अलग से दिव्य दृष्टि दिया? तो उसके तात्पर्य में वर्णन करते हैं उदाहरण देकर। तो कहते हैं कि अर्जुन सर्वोच्च रस का रसास्वादन कर रहे थे, होते साक्ष्य रस का रसास्वादन कर रहे थे, भगवान के साथ भक्ति का रसास्वादन कर रहे थे, और उसी रस में विश्व रूप का रस दर्शन देना, फिर वो फिर संभव कैसे है, या वो कैसे दर्शन होगा? जैसे उदाहरण देते हैं कि मान लो कि किसी ने बहुत मीठा कड़ी शक्कर खा लिया है, और कड़ी शक्कर खाने के बाद किसी को अगर ऐसा गन्ना जो पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, वैसा गन्ना अगर दे दिया जाए खाने, तो उसमें उनको स्वाद मिलेगा? क्योंकि उसका रस नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले से उन्होंने कड़ी शक्कर खा के बड़ा मिठास ले लिया है, तो निचला प्रकार के स्वाद कैसे मिलेंगे? तो वैसे ही यहां पर भगवान के सर्वोच्च रस को रसास्वादन कर रहे थे अर्जुन, तो अब उन्हें विश्वरूप का दर्शन देना था, तो वो निचला प्रकार का रस है। वो निचला प्रकार का रस को प्रदान करने के लिए उनका पूरा दृष्टि बदलना होगा, इसलिए दिव्य दृष्टि देना जरूरी पड़ा अर्जुन को। तो इस तरह अर्जुन ने जो दर्शन किया, वो दर्शन वास्तविकता उन्होंने इस दृष्टि प्रदान करने के बाद ही किए, जबकि अर्जुन सर्वोच्च रस को प्राप्त कर रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि जब अर्जुन सर्वोच्च रस को प्राप्त कर रहे थे, तो भी इस विश्वरूप के दर्शन के लिए लालायित क्यों हुए? वो इसीलिए, क्योंकि पिछले प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भविष्य में ऐसे कलयुग में भी लोग ऐसा घोषित ना करें कि मैं भगवान हूं। अगर कोई ऐसा घोषित करता है, तब तो फिर उसे विश्वरूप दिखाना भी पड़ेगा। मैं जब गजपति प्रभु धंधों में जब आ रहे थे, तो वहां पर रिक्शा में एक व्यक्ति मिल गया, तो बोलने लगे, पहले मैं सोचता था कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। तो मैंने बोला, अभी क्या हो गया? बोला, नहीं, अब पता लगा मैं भक्त हूं। मैंने बोला, क्यों? बोला, नहीं, ईश्वर होता तो फिर मुझे विश्वरूप ही दिखाना पड़ता। तो सहमत हो गया कि मैं भक्ति हूं। तो वैसे जो अगर अपने आप को घोषित करता है कि मैं भगवान हूं, तो उसे यह भी दिखाना पड़ेगा विश्वरूप का दर्शन। अब यहां पर वो अर्जुन उस नून लोगों को खंडन करने के लिए अर्जुन ने निवेदन किया कि मुझे अब विश्वरूप का दर्शन दो। और इस तरह यहां पर यशोदा मैया वो घबरा गई, और घबराते हुए उन्होंने, इसलिए यहां पर यह शब्द उपयोग किया गया है, मृगाक्षी यानी हिरण के नेत्र के समान उनकी तुलना की। फिर आगे कहते सुविस्मिता। अब यहां पर यशोदा मैया को तुलना किया गया सुविस्मिता, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक हो गई यशोदा मैया। आश्चर्यजनक क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इसके विषय में तीन आचार्यगण इसका तीन कारण बताते, उनका आश्चर्यजनक होने का कारण क्या था। तो पहला प्रथम कारण ये बताते हैं कि जब यशोदा मैया तृणाव्रत के वध के पहले जब यशोदा मैया ने जब कृष्ण को अपने गोद पर रखा था, तब उनका वजन बड़ा बड़ा भारी लग रहा था, ये एक कारण। दूसरा ये कारण कि वो एक एक क्षण उनका वजन बढ़ता जा रहा था, ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण यह है कि यहाँ पर अब उनके मुख में पूरे विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। ये तीन कारण के वजह से यशोदा मैया को यहाँ पर सुविस्मिता करके यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो भक्तगण यहाँ पर भगवान के जितने ब्रज में जितने भी भगवान के भक्तगण है, नित्य पार्षद लोग हैं, वो भगवान को ईश्वर के रूप में स्वीकारते ही नहीं है, क्योंकि योग माया की शक्ति के आधार पर वो ये भूल जाते कि ये स्वयं भगवान है। उन्हें लगता है हमारे गली का एक लड़का है और वो कौन, बाल गोपाल कृष्ण, और उन्हें इस प्रकार महसूस होता है। तो सुविस्मिता, तो कभी कभी ऐसे अद्भुत कार्य करते तो भक्त लोग आश्चर्यजनक हो जाते कि ऐसे कैसे हो गया, इन्होंने ऐसे कैसे कार्य किया। लेकिन भगवान कभी आश्चर्यजनक नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारी मेरी ही शक्ति है, उन्हें आश्चर्यजनक होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन उनके भक्त लोग आश्चर्यजनक हो जाते हैं। जैसे गोवर्धन लीलाओं में, जहां पर जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था अपने छोटे से उंगली में, तब उस समय 2 दिन हो गया था, तब सुबाल ने कहा कि देखो आप थक गए होंगे, आपकी उंगलियां दर्द होती होगी। सुबाल भी सोच रहा था कि ये पर्वत ऐसे कैसे टिका है, उन्हें भी ये महसूस हो रहा था अपने आप अनायास खड़ा है लगता है, और केवल यहाँ पर कृष्ण केवल ऐसे दिखा रहे खड़े रहकर। तो उन्होंने कहा देखो कृष्ण तुम बहुत थक गए होंगे, अब तुम थोड़ा विश्राम करो, तुम्हारी उंगलियां दुखती होगी, मैं अपने ब्रह्म तेज से इनको खड़ा करता हूँ। और उसने भी डंडा लाया सुबाल ने, और कहा मैं अपने डंडे से पकड़ लूंगा गोवर्धन, आप चिंता मत करो। तो कृष्ण ने कहा पकड़ लोगे, तो बोला ठीक है संभाल लेना मैं छोड़ रहा हूँ। और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा उंगली हिलाया कि ऐसा हड़बड़ हो गया वहां पर कि सुबाल भी जो था धड़ाम करके गिर पड़ा। तो बोला दे दे तू भी ठीक हो रहा। तो ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य साक्षात देखने के बाद भी भक्तगण ये नहीं समझ पाते थे कि यही भगवान है, उन्हें महसूस ही नहीं होता था। तो भक्तों के लिए कभी कभी कुछ आश्चर्य वाली बात होती थी, लेकिन कृष्ण के लिए केवल एक ही आश्चर्य वाली बात थी, और वो यह है कि मेरे भक्त मेरे से कितना प्रेम करते, और ये देखकर भगवान को आश्चर्य लगता है। और इसीलिए वही भगवान सुविस्मिता होते हुए वही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप के अवतार धारण करके इस संसार में आए, और ये जानने का प्रयास किए कि उनके जो प्रिय भक्त श्रीमती राधा रानी उनसे कितना प्रेम करती है। तो वैसे संत तुकाराम भी वर्णन करते हैं कि भगवान सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि उनके भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं, और जबकि उनके भक्त को उनसे ज्यादा आनंद मिलता है। एक बार मायावती आकर श्रील प्रभुपाद जी को कहने लगे कि हम लोग भगवान बन सकते हैं वगैरह, प्रभुपाद ने कहा नहीं हम उनसे बढ़कर बनेंगे। तो इन्होंने कभी सुना नहीं था ये टिप्पणी, ये सुनकर वो भी आश्चर्य हो गया। तो प्रभुपाद वहां पर बताते कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त। तो जैसे भगवान अपने भक्त को ही सबसे ज्यादा श्रेय देते हैं, जैसे प्रभु रामचंद्र जी को जब लंका जाना था तो सेतु बांधना पड़ा, लेकिन हनुमान को एक ही छलांग में पहुंच गए, तो कौन बड़ा, हनुमान क्या राम? तो भगवान से बड़ा भगवान के भक्त। तो वैसे ही भगवान अपने भक्त को, भक्त के हृदय में जो आनंद प्राप्त हो रहा वो आनंद को देखकर भगवान आश्चर्य हो जाते हैं। और उसी को तुलना में संत तुकाराम उदाहरण देकर कहते हैं कि जो मोती जो होता है, जो समुन्द्र में से जो मोती बनता है, अब वो मोतियों की जो माला है, उस मोती का जो रस जो है, वो शिप जो होता है उसे नहीं प्राप्त होता, वो शिप से ही बनता है मोती, अब उसी रस को वो शिप नहीं प्राप्त कर पाता, लेकिन उसी मोतियों की माला को जब एक अमीर कोई व्यक्ति धारण करता है तो उस मोतियों की माला का रस प्राप्त करता है, तो जबकि वो शिव को रस प्राप्त नहीं होता है। तो कहते कि ठीक इसी तरह भगवान जो आनंद घन है लेकिन उनके सर्वोच्च आनंद का रस भगवान भी नहीं प्राप्त कर पाते लेकिन उनके भक्त लोग प्राप्त करते अनेक अनेक रस के द्वारा। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार पुष्प जो होता है पुष्प के अंदर मधु आता है और उस मधु का जो रस कौन प्राप्त करता, मधुमक्खी उसी पुष्प के अंदर का, लेकिन वो पुष्प प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक इसी तरह भगवान भी अपने भक्त के हृदय में जो आनंद का जो रस है उसे देखकर भगवान भी सुविस्मिता, वो भी आश्चर्य हो जाते हैं। तो इस तरह यहां पर यशोदा मैया नेत्र आसीत सुविस्मिता, वो आश्चर्यजनक से भगवान श्री कृष्ण को देखने लगी। हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।